नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो दस्तावेज है वो किसी बिजनेस स्कूल की केस स्टडी जैसा लगता है, पर है उससे कहीं ज्यादा कच्चा और असली। इसका शीर्षक है मैनेज्ड मैनपावर एग्रीगेटर, पर जो चीज इसे खास बनाती है वो इसका उपशीर्षक है एक कंट्रोल डॉक्यूमेंट। ये कोई मार्केटिंग पिच नहीं है, कोई विजन नोट नहीं, ये नियमों की एक किताब है जो निर्माण उद्योग जैसे एक अस्त व्यस्त माहौल में व्यवस्था बनाने के लिए लिखी गई है। तो आज हम इस दस्तावेज की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जमीनी हकीकत पर एक कारोबार कैसे बनाया जाता है। हम देखेंगे कि ये किन समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहा है और सबसे जरूरी, ये इंसानी बर्ताव को भरोसे से नहीं बल्कि एक सिस्टम से कैसे नियंत्रित करता है। चलिए शुरू करते हैं।
हाँ, और शुरू करने से पहले इस शब्द कंट्रोल डॉक्यूमेंट पर रुकना बहुत जरूरी है। ये शब्द जानबूझकर चुना गया है। पहली ही लाइन में ये साफ कर देता है कि ये बिजनेस भावनाओं पर, दोस्ती यारी या किसी की अच्छी नीयत पर नहीं चलेगा।
अच्छा,
ये ठोस न बदले जा सकने वाले नियमों पर चलेगा। इसका पूरा मकसद ही भ्रम और भावनात्मक फैसलों से बचना है, जिसे ये दस्तावेज ऐसे कारोबारों की असफलता का मतलब मुख्य कारण मानता है।
तो ये एक तरह से बिजनेस का संविधान है।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये प्लेटफॉर्म क्या है और क्या नहीं है। दस्तावेज साफ कहता है ये निर्माण उद्योग के लिए एक मैनेज्ड मैन पावर एग्रीगेटर है। इसका मतलब है कि ये स्वतंत्र श्रमिकों को इकट्ठा तो करता है, लेकिन हर चीज पर इसका पूरा नियंत्रण होता है। उनकी ऑनबोर्डिंग से लेकर तैनाती, हाजिरी, अनुशासन, पेमेंट और यहाँ तक कि उन्हें काम देने की प्रायोरिटी पर भी।
तो संक्षेप में कहने को श्रमिक आजाद हैं, लेकिन सिस्टम बहुत सख्त है।
हाँ बिल्कुल, और ये क्या नहीं है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये कोई Naukri.com जैसा जॉब पोर्टल नहीं है, कोई जब जरूरत हो तो फोन कर लेना वाला लोकल जुगाड़ नहीं है और ना ही कोई सस्ता मजदूर सप्लायर है। ये अंतर क्यों इतना जरूरी है?
यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। इस दस्तावेज के अनुसार ज्यादातर मैनपावर के बिजनेस इसलिए डूब जाते हैं क्योंकि वो दोस्ताना या लचीला बनने की कोशिश करते हैं।
अच्छा,
वो व्यक्तिगत अनुरोधों को मानते हैं, नियमों में ढील देते हैं और धीरे धीरे पूरा सिस्टम ही बिखर जाता है। ये दस्तावेज कहता है कि इस काम में दोस्ती नहीं, एक सख्त और संरचित प्रणाली की जरूरत होती है।
सही बात है। और ये मॉडल आया कहाँ से?
दस्तावेज यवतमाल जैसे Tier 3 बाजार की हकीकत पर आधारित है। वहाँ लिखा है कि मजदूरों की कमी असली समस्या नहीं है।
हाँ।
असली समस्या है भरोसे की, अनुशासन की और जवाबदेही की। दस्तावेज में साफ साफ लिखा है कि मजदूर बिना बताए काम पर नहीं आते, सुपरवाइजर हाजिरी में हेरफेर करते हैं ताकि अपने पसंदीदा मजदूर को फायदा पहुंचा सकें, और ठेकेदार पेमेंट में हमेशा नाकानी करते हैं।
और इसी अराजकता का जवाब एक बुनियादी सिद्धांत में दिया गया है जो इस पूरे दस्तावेज की मतलब आत्मा है।
क्या है वो? वो सिद्धांत है, भरोसा बड़े पैमाने पर काम नहीं करता, सिस्टम करते हैं।
ये लाइन तो सोचने वाली है।
इसका मतलब यह है कि जब आप 10 लोगों के साथ काम करते हैं तो शायद भरोसा चल सकता है, लेकिन जब आप 100 या 1000 लोगों के साथ काम करेंगे तो भरोसा टूट जाएगा।
सही।
इसलिए इस दस्तावेज का हर नियम, बहस और व्यक्तिगत बातचीत को खत्म करके उसे एक ठोस प्रक्रिया से बदलने के लिए बनाया गया है।
ये बात तो सोचने वाली है। क्या इसका मतलब ये है कि बड़े बिजनेस बनाने के लिए भरोसे को समीकरण से पूरी तरह हटाना ही एकमात्र रास्ता है? खैर, इस पर शायद हम बाद में लौटेंगे, लेकिन पहले उन जोखिमों की बात करते हैं जिन्हें ये दस्तावेज स्वीकार करता है। ये किसी आदर्श दुनिया की बात नहीं करता, ये उन जोखिमों की एक लिस्ट देता है जो बिल्कुल असली हैं। एक मिनट, ये लिस्ट देखिए। इसमें लिखा है मजदूरों का काम पर ना आना, देर से आना, जल्दी जाना, फर्जी हाजिरी लगाना।
बाप रे।
सुपरवाइजर और मजदूरों की मिलीभगत से सिस्टम को धोखा देना, ठेकेदार का सीधे मजदूरों से संपर्क करके प्लेटफॉर्म को दरकिनार करना, पेमेंट पे विवाद और यहाँ तक कि फाउंडर का थक जाना यानी बर्नआउट भी एक जोखिम माना गया है।
वाह, ये तो शायद ही कोई बिजनेस प्लान स्वीकार करता है।
बिल्कुल, ये काफी कुछ कहता है कि ये दस्तावेज कितना जमीनी हकीकत से जुड़ा है।
बिल्कुल, और इन सभी जोखिमों से निपटने का जो दर्शन है वो भी उतना ही व्यावहारिक है। सिस्टम पर भरोसा करो, इंसान पर नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग बुरे हैं, बल्कि ये कि इंसान का स्वभाव अप्रत्याशित होता है। इसलिए ये सिस्टम इंसानी स्वभाव से लड़ने की कोशिश नहीं करता, इसके बजाय ये ऐसे नियम बनाता है जो नुकसान को सीमित करते हैं। दस्तावेज में एक लाइन है, कोई चिल्लाहट नहीं, कोई विनती नहीं, कोई खास छूट नहीं।
और
अगर किसी नियम को रोज समझाना पड़े तो वो नियम ही खराब है, सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो खुद अपनी व्याख्या करे।
ठीक है, तो ये तो हुई फिलॉसफी, पर ये काम कैसे करता है? चलिए इसके इंजन यानी इसके मुख्य ऑपरेशनल सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले है उपस्थिति नियंत्रण प्रणाली यानी अटेंडेंस कंट्रोल सिस्टम। दस्तावेज इसे अधिकार की रीढ़ यानी बैकबोन ऑफ अथॉरिटी कहता है।
ये शब्द बहुत शक्तिशाली है।
इसी एक चीज यानी हाजिरी से ही पेमेंट, प्राथमिकता और अनुशासन तय होता है। अगर ये सिस्टम कमजोर पड़ गया तो सब कुछ ढह जाएगा। और इसे लागू करने का तरीका है QR आधारित उपस्थिति। प्रक्रिया बहुत सटीक है। हर मजदूर को एक फिजिकल ID कार्ड मिलता है जिस पर एक यूनिक QR कोड होता है।
ठीक है।
केवल ठेकेदार का रजिस्टर्ड साइट सुपरवाइजर ही अपने फोन से इसे स्कैन कर सकता है, और हर स्कैन 5 चीजें अपने आप रिकॉर्ड करता है। सही समय, GPS लोकेशन, मजदूर की ID, सुपरवाइजर की ID और साइट की ID।
यहाँ पे जो समय सीमा के नियम हैं, वे पत्थर की लकीर की तरह हैं। जैसे चेक इन का समय सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक है।
ओके।
अगर कोई 8:30 से 9:30 के बीच आता है तो उसे 1 घंटे की छूट तो है, लेकिन सिस्टम अपने आप उसकी हाजिरी आधे दिन की लगा देगा।
कोई बहस नहीं,
कोई बहस नहीं, कोई माफी नहीं।
और अगर कोई 9:30 के बाद आता है
तो सिस्टम स्कैन को अस्वीकार कर देगा। उस मजदूर को उस दिन के लिए अनुपस्थित माना जाएगा और घर भेज दिया जाएगा।
अच्छा।
और सबसे महत्वपूर्ण नियम जिसका बार बार जिक्र है, उपस्थिति में कोई मौखिक या मैनुअल सुधार नहीं होगा। जो सिस्टम में दर्ज हो गया वही अंतिम सत्य।
ये तो बहुत सख्त नियम है। मान लीजिए किसी सुपरवाइजर का फोन डेड हो गया या साइट पे नेटवर्क नहीं था और मजदूर समय पर था, क्या ऐसे हालात के लिए कोई गुंजाइश नहीं है? क्या ये सिस्टम जरूरत से ज्यादा कठोर नहीं हो जाएगा?
ये सवाल बहुत वाजिब है और दस्तावेज इसका भी जवाब देता है। इसके लिए एक और मजबूत सिद्धांत है, मजदूर मौजूद इक्वल्स ठेकेदार भुगतान करेगा।
अच्छा।
इसका मतलब है कि अगर कोई मजदूर साइट पर शारीरिक रूप से मौजूद है और काम करने को तैयार है तो ठेकेदार को उसे भुगतान करना ही होगा,
भले ही स्कैनिंग में कोई तकनीकी समस्या हुई हो।
हाँ बिल्कुल, यह जिम्मेदारी ठेकेदार और उसके सुपरवाइजर की है कि वे सिस्टम को चालू रखें।
अच्छा, तो ये नियम सुपरवाइजर को ताकत के गलत इस्तेमाल से रोकता है। वो ये बहाना नहीं बना सकता कि स्कैन नहीं हुआ इसलिए पैसे नहीं मिलेंगे।
बिल्कुल, यह सुनिश्चित करता है कि भुगतान से बचने के लिए उपस्थिति में हेरफेर न किया जा सके। दस्तावेज कहता है कि अगर किसी खास परिस्थिति में बदलाव करना भी पड़ा तो वो सिर्फ एडमिन कर सकता है।
ओके।
और हर बदलाव का एक डिजिटल लॉग बनेगा कारण के साथ, और यह बहुत ही दुर्लभ मामलों में होगा। कोई भावनात्मक सुधार नहीं होगा। सिस्टम एक रेफरी की तरह है जो किसी की दलील नहीं सुनता।
उसे बस ये पता है कि अगर गेंद लाइन के बाहर है तो वो बाहर है।
सही।
ठीक है, तो अटेंडेंस का मसला तो हल हो गया, लेकिन असली लड़ाई तो पैसों की होती है। एक बार मजदूर साइट पर आ गया तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि उसे सही पैसा मिले और ठेकेदार भी आनाकानी ना करे? इस पर दस्तावेज का नजरिया काफी दिलचस्प है।
हाँ, भुगतान प्रणाली को 3 मकसदों के लिए बनाया गया है, प्लेटफॉर्म की सुरक्षा, मजदूरों की वफादारी और विवादों को काम करना। नियम बहुत सरल हैं। ठेकेदार प्लेटफॉर्म को रोजाना भुगतान करते हैं। नए ठेकेदारों को कोई क्रेडिट नहीं, कोई उधार नहीं। काम शुरू होने से पैसा प्लेटफॉर्म के पास होना चाहिए।
और मजदूरों को पेमेंट?
मजदूरों को साप्ताहिक भुगतान किया जाता है, हर हफ्ते एक निश्चित दिन पर। और एक और बड़ा नियम, कोई एडवांस नहीं।
कोई एडवांस नहीं,
किसी भी मजदूर को एडवांस पैसा नहीं दिया जाएगा।
साप्ताहिक भुगतान, रोज क्यों नहीं? ज्यादातर मजदूर तो दिहाड़ी पर काम करते।
ये साप्ताहिक भुगतान का निर्णय बहुत सोचा समझा और रणनीतिक है।
अच्छा।
इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला, अगर मजदूर को रोज पैसे मिलेंगे तो हो सकता है कि वो अगले दिन काम पर ना आए। साप्ताहिक पेमेंट उसे पूरे हफ्ते काम से जोड़े रखता है।
सही।
दूसरा, ये ठेकेदार को मजदूरों को सीधे पैसे देकर अपनी तरफ खींचने से रोकता है। और तीसरा, ये प्लेटफॉर्म के हाथ में एक नियंत्रण का साधन देता है। नकदी प्रवाह के माध्यम से नियंत्रण बनाए रखना ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है।
ये साप्ताहिक पेमेंट वाला नियम सिर्फ पैसों के लेन देन से कहीं ज्यादा है। ये सीधे तौर पर मजदूरों और ठेकेदारों के व्यवहार को कंट्रोल करने का एक टूल बन जाता है। चलिए इसी पर बात करते हैं कि ये सिस्टम इन अलग अलग लोगों को कैसे संभालता है। मजदूरों के लिए नियम क्या है?
मजदूरों के लिए नियम बहुत स्पष्ट, सरल और गैर भावनात्मक है। समय पर रिपोर्ट करना है, हाजिरी के नियम सिस्टम तय करेगा, कोई इंसान नहीं। देर से आने या जल्दी जाने पर जुर्माना अपने आप लग जाएगा।
अपने आप?
हाँ, ऑटोमेटिक। अगर कोई मजदूर बार बार अनुशासन तोड़ता है तो सिस्टम में उसकी प्राथमिकता अपने आप कम हो जाएगी।
यहाँ दस्तावेज एक दिलचस्प बात कहता है, कोई स्थायी ब्लैकलिस्ट नहीं है, केवल डेटा आधारित प्रतिबंध है। मतलब सिस्टम तय करता है, कोई मैनेजर अपनी नाराजगी में किसी को हमेशा के लिए बैन नहीं कर सकता।
बिल्कुल।
अगर मजदूर अपना व्यवहार सुधारता है तो उसका स्कोर भी सुधर जाएगा।
बिल्कुल।
और यहाँ एक बहुत ही अनूठा और शक्तिशाली नियंत्रण है जिसे दस्तावेज परिवार की सहमति कहता है।
परिवार की सहमति, इसका क्या मतलब है?
मजदूर को ऑनबोर्ड करते समय उसके परिवार के एक सदस्य को सूचित किया जाता है, उनका संपर्क नंबर रिकॉर्ड किया जाता है और उन्हें काम की प्रकृति, समय और साप्ताहिक भुगतान चक्र के बारे में बताया जाता है।
कागज पर तो ये एक अच्छा सेफ्टी नेट लगता है, लेकिन क्या इसे मजदूर की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी की तरह भी देखा जा सकता है?
देखा जा सकता है, लेकिन दस्तावेज के अनुसार इसका उद्देश्य बहुत व्यवहारिक है। यह अचानक काम छोड़ने और भावनात्मक हस्तक्षेप को कम करता है।
अच्छा, अगर कोई मजदूर बिना बताए गायब हो जाता है तो परिवार को पता होता है कि मामला क्या है। ये एक सामाजिक दबाव भी बनाता है और मजदूर को ज्यादा जिम्मेदार बनाता है। ये उस बाजार की सामाजिक संरचना को समझकर बनाया गया नियम है।
ठीक है, अब ठेकेदारों और सुपरवाइजरों की बात करते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं?
उनकी भी जिम्मेदारियां उतनी ही साफ हैं। ठेकेदार को स्कैनर चलाने के लिए एक सुपरवाइजर देना होगा और ये मानना होगा कि अगर मजदूर साइट पर है तो उसे भुगतान करना पड़ेगा। सुपरवाइजर को ईमानदारी से स्कैन करना होगा। दस्तावेज साफ कहता है कि सुपरवाइजर की किसी भी धोखाधड़ी का सीधा असर ठेकेदार की मैनपावर तक पहुंच पर पड़ेगा।
लेकिन मिलीभगत का क्या, अगर सुपरवाइजर और मजदूर मिलकर सिस्टम को धोखा देने की कोशिश करें तो?
जैसे सुपरवाइजर किसी दोस्त की हाजिरी लगा दे जो साइट पर है ही नहीं।
सिस्टम इस संभावना को मानकर ही बनाया गया है, इसीलिए मिलीभगत को मुश्किल और असुविधाजनक बनाने के लिए कई परतें हैं।
जैसे कि पहली, समय सीमा। सुपरवाइजर एक साथ कई स्कैन नहीं कर सकता क्योंकि उसे 8 से 8:30 के बीच ही सबकी हाजिरी लगानी है।
ठीक है।
दूसरा, GPS लोकेशन कैप्चर। वो साइट से दूर बैठकर किसी की हाजिरी नहीं लगा सकता।
ठीक है।
तीसरा, अगर कोई मजदूर बार बार शिकायत करता है कि सुपरवाइजर पक्षपात कर रहा है तो सिस्टम उस पैटर्न की समीक्षा के लिए एक अलर्ट भेजता है।
तो सिस्टम आरोप नहीं लगाता?
नहीं, वो केवल पैटर्न देखता है।
और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई ठेकेदार प्लेटफॉर्म को दरकिनार करने यानी बाईपास करने की कोशिश करता है और मजदूरों को सीधे काम पे रखने लगता है, इस पर दस्तावेज का रुख बहुत सख्त लगता है। इसमें लिखा है यह चर्चा का विषय नहीं है।
बिल्कुल, इसका परिणाम भावनात्मक नहीं बल्कि संरचनात्मक है। जैसा हमने पहले बात की, मजदूरों को साप्ताहिक भुगतान मिलता है और वो भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से।
हाँ।
तो ठेकेदार उन्हें सीधे थोड़ी ज्यादा पैसे देकर नहीं खींच सकता क्योंकि मजदूर को अपना हफ्ते का पैसा डूबने का डर रहेगा।
सही बात है।
हम तय हैं, मैन पावर की कमी के दौरान उसे शून्य प्राथमिकता दी जाएगी।
मतलब जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत होगी उसे कोई मजदूर नहीं मिलेगा।
बिल्कुल, और अगर वो ये दोहराता है तो उसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
कोई बातचीत नहीं।
कोई बातचीत नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं।
अंत में शासन की बात करते हैं। दस्तावेज साफ करता है कि हर मुद्दे पर अंतिम अधिकार प्लेटफॉर्म का ही होगा, चाहे वो हाजिरी का नतीजा हो, मजदूर का अनुशासन हो या कोई और विवाद। व्यक्तिगत संतुष्टि से ज्यादा सिस्टम की निरंतरता को महत्व दिया जाता है।
और पार्टनर्स के लिए जो अंतिम नोट है वो इस पूरे दर्शन का सार है। ये प्लेटफॉर्म बिना किसी हीरोपंती के चलने के लिए बनाया गया है।
अच्छा।
इसे रोज की समस्याओं को सुलझाने के लिए किसी मैनेजर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दस्तावेज की भाषा में, कोई भावनात्मक बातचीत नहीं, किसी की व्यक्तिगत सद्भावना पर कोई निर्भरता नहीं,
बस नियम, सिस्टम, पैटर्न और परिणाम।
हाँ।
दस्तावेज कहता है कि इसी तरह ये व्यवसाय बचेगा और बढ़ेगा।
बिल्कुल।
तो आज इस कंट्रोल डॉक्यूमेंट की हमारी इस गहरी पड़ताल से जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो है एक ऐसे बिजनेस मॉडल को बनाने का प्रयास जो पूरी तरह से सिस्टम पर आधारित हो, न कि भरोसे पर। इसका हर नियम, हर प्रक्रिया, हर सिद्धांत उस अराजकता को कम करने के लिए बनाया गया है जो मैन पावर जैसे असंगठित क्षेत्र में आम है।
हाँ।
ये पैमाने को संभव बनाने के लिए इंसानी फैसलों को कम से कम करने की कोशिश है।
ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। आज की दुनिया में जहां हम हर तरफ लचीलेपन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और मानवीय स्पर्श ह्यूमन टच की बात करते हैं, वहीं ये मॉडल सख्त न बदले जा सकने वाले नियमों की शक्ति पर दांव लगाता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्या इस तरह की कठोर प्रणालियां जो मानवीय भावनाओं, गलतियों और अपवादों को समीकरण से हटाने की कोशिश करती हैं, वास्तव में लंबे समय तक टिकाऊ होती हैं।
और क्या होगा जब कोई ऐसी अप्रत्याशित स्थिति पैदा हो जो इन नियमों की किताब में लिखी ही ना हो, तब सिस्टम का रेफरी क्या करेगा?